کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بازار سے دعوت کا کام کر کے نکل گئے. کچھ دور چند غلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, میرے نبی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اتنے میں ایک لمبا تڑنگا آدمی وہاں سے گزرا تو بولا, آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں سنیں اور دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے اپنی مجلس میں کن کو بٹھایا ہے, ہمارے غلاموں کو. آپ کیا چاہتے ہیں, ہم ان کے برابر آ کر بیٹھ جائیں یا تو آپ ہمارے لیے الگ مجلس کا اہتمام کریں یا ان کو اپنے پاس سے اٹھا لیں, ہمیں تو شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. میرے نبی نے بڑی نرمی سے فرمایا, ٹھیک ہے اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو. میں نے سوچا اب ان لوگوں کے پاس یہ بہانہ بھی ختم ہوا, مگر اس آدمی کو تو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. بولا, نہیں میں ایسے نہیں مانوں گا, آپ کہیں سے لکھ کر لا کر دیں, اس کو لکھ کر دیں مجھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے. میرے نبی نے لکھنے کا سامان منگوایا, علی سے فرمایا جاؤ سامان لے کر آؤ. میں نے دیکھا وہ غریب مسکین سے لوگ یہ سارا تماشا اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. وہ اتنے فقیر تھے, اتنے تنگ دست تھے, کچھ بول نہیں سکتے تھے, ان کی ہمت کیا ہوتی. ان سے بہتر حال حلیے میں تو ہمارا خانسامہ اور ڈرائیور ہی ہوتے ہیں. یہ تو دبلے پتلے جسم والے پسینے میں شرابور ایسے لوگ کے جن کے کپڑے بھی انتہائی معمولی, آدھے بدن ننگے, مشقت کر کر کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے مگر لبوں پہ خاموشی تھی, شکایت کا ایک حرف بھی نہیں تھا. ابھی علی سے آپ نے یہ کہا تھا اور علی لکھنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اچانک میں نے دیکھا میرے نبی کی حالت کچھ الگ سی ہونے لگی, جیسے آپ بودھ سے بالکل بیٹھ گئے ہوں. آپ کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا اور یوں لگ رہا تھا کہ بودھ سے آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی, مگر بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ دیر آپ کی ایسی کیفیت رہی, پھر جب آپ کچھ بہتر ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں اور مجھے یہ آیات دی ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجئے جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں. آپ اگر ان کو دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ آیات سن کر ان غلاموں کے چہرے کھل گئے اور دوسرے لوگ مایوس ہو کر ایک طرف چل دیے. میں سوچ رہی تھی یہ کتنا مشکل کام ہے, کتنا سٹریس ہے, اور ہم اپنی زندگی میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا زیادہ سٹریس لے لیتے ہیں, جبکہ یہاں تو ایک دن بھی سروائیو کرنا مشکل ہے. میں خاموشی سے وہاں سے چل دی. رات کا اندھیرا چھا رہا تھا, ہر طرف سناٹا چھا رہا تھا. चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गई जहां दिल खराश चीखों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नौउम्र लड़का किसी टॉर्चर से गुजर रहा हो। यह आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे मेरे बेटे कासिम की, मेरे बेटे के बराबर का ही कोई बच्चा लगता है, 12-13 साल का होगा, जो बहुत शदीद तकलीफ में चीखे मार रहा था। मैं आवाज की सिमत में तेजी से चलने लगी, लगता है किसी को मदद चाहिए। यहां कोई पुलिस नहीं, यहां कोई 911 नहीं। मैंने देखा चीखें एक घर से आ रही हैं। हर तरफ खामोशी, मगर इस घर की चीखों ने आसमान सर पे उठाया हुआ था। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। एक शख्स जो इस बस्ती में नया आने वाला लग रहा था, रास्ते से गुजरते हुए एक राहगीर से कहने लगा, ये कौन चीख रहा है? राहगीर बेपरवाही से बोला, वो ही जुबैर बिन अवाम है, उसने नया दीन जो अपना लिया, उसका चाचा उसकी अकल दुरुस्त कर रहा है। वो नया आने वाला शख्स हैरत से बोला, क्या मतलब? दूसरा बोला, हाँ, रात को उसका चाचा उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है, जहां ना कोई खिड़की ना कोई रोशनदान है। फिर कमरे के बाहर आग लगा देता है, और उसके धुएं से जब इसका दम घुटता है तो इसी तरह हर रात चीखे मारता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरी टांगे, यूं लगता था मेरा साथ नहीं दे रही। मैं वहीं एक तरफ बैठ गई। एक ऐसा संगदिल आदमी है, कितने आराम से बोल रहा है, और मुझे तो अपने बच्चे याद आने लगे। ये कैसे लोग हैं? क्या इनमें इस जुल्म के खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं? क्या इस जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं? कोई अदालत नहीं, क्यों? कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कोई पुलिस नहीं? मेरे जमाने में तो ऐसा नहीं होता। इतने में मेरे अंदर से आवाज आई, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे जमाने में क्या ऐसा नहीं होता? तुम्हारे जमाने में भी ऐसी जगह हैं जहां कलमा पढ़ने वालों के गले काटे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो नबी का कलमा पढ़ते हैं। मासूमों के खून बहाए जाते हैं। कोई भी तो बोलने वाला नहीं होता, सारी दुनिया तमाशा देखती है। औरतों की इज्जतें लूटी जाती हैं, कोई चूं करने वाला नहीं होता। नौजवानों को बेकसूर मारा जाता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। तुम्हारे पास पुलिस है, अदालतें हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, मगर किस काम के? तुम्हारे यहां भी तो यही होता है। हाँ, तारीख बदल गई है, नंबर बदल गया साल का, मगर काम तो वही है। सच्चे कलमा गो के लिए जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। मैं ये सोचकर थक कर बैठ गई, ये कैसा माशरा है, ये कैसे लोग हैं? अपने ही प्यारों के ऊपर इतना जुल्म ढाने वाले। मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद की, जब खोली तो मैंने देखा एक शख्स ने बड़ी सी दावत का एहतमाम किया हुआ, बड़े बड़े अशराफिया उसकी दावत पे आए हुए हैं, सब लोग बैठे खुशगपियों में मसरूफ हैं। लोग एक आदमी को उकबा बिन अबी मुआइद कहकर पुकार रहे हैं, और उसको पूछ रहे हैं कि उसका सफर कैसा गुजरा, उससे उसके सफर की दास्तानें सुन रहे हैं, और कोई उसकी गैर मौजूदगी में होने वाले हालात से उसको आगाह कर रहा है। लगता है ये दावत भी उसने सफर से वापसी के लिए रखी है। उसके गुलाम जल्दी जल्दी खाना लगा रहे हैं। जब खाना लग गया सब खाने की तरफ बढ़े। इन्हीं लोगों में एक तरफ मेरे प्यारे नबी भी बैठे हैं। उकबा ने उनको भी खाने के लिए बुलाया। मेरे नबी ने फरमाया, मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा सिवाय एक शर्त है मेरी। उकबा सवालिया अंदाज में देखने लगा तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम गवाही दे दो कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। उकबा के दिल पर शायद इस्लाम का पहले ही रोब बैठा हुआ था। उसने फौरन बगैर किसी तरद्दुद के कलमा पढ़ लिया। मेरे नबी खुशी खुशी उठे और उसकी दावत से खाना खा लिया। और मुझे भी बहुत खुशी थी कि आज एक और शख्स मुसलमान हो गया। फिर लोग एक एक करके रुख्सत होने लगे। कुछ लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। आखिर उन्होंने उकबा को कलमा पढ़ते हुए जो सुन लिया था, और लगता था कि कलमा पढ़ना इस माशरे में कोई जुर्म है। कुछ लोग उकबा को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मेरे नबी खुशी खुशी उसके घर से रुख्सत हुए। जब सब मेहमान चले गए तो अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। उकबा ने दरवाजा खोला तो वहां उसका गहरा दोस्त उबई खड़ा था। ये वही उबई था जो उमैया का भाई था, उबई बिन खल्फ। उसने बगैर किसी सलाम दुआ के, बगैर हाल चाल पूछे हुए एकदम उकबा से कहा, तू क्या साबी हो गया? उकबा घबरा गया, बोला, नहीं नहीं ऐसा तो हरगिज नहीं हुआ, मैं क्यों हूंगा साबी। फिर खिसियाना सो के कहने लगा, अच्छा अब समझा, वो तुम मेरे घर के दावत के उस वाक्य को शायद ये समझ रहे हो कि मैं साबी हो गया। वो तो मैंने दावत रखी हुई थी और एक मुआज़्ज़ज़ मेहमान आया हुआ था, और मेहमान ने खाने खाने की एक ही शर्त रखी थी कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह दूं। तो बस मैंने उसकी बात मान ली सिर्फ इसलिए ताकि वो खाना खा कर जाए। मैंने कोई दिल से थोड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, सिर्फ जुबान की हद तक कहा था। मैं कुछ इसको सच थोड़ी मानता हूं। मुझे उसके दोगलेपन पे बहुत गुस्सा आया, ऐसी मुनाफ़क़त। मगर उबई बिन खल्फ को लगता था उकबा की बातों पर यकीन नहीं आया। वो कुछ और अश्योरिटी चाहता था। चुनाचे वो उछल के बोला, बस मेरी और तुम्हारी दोस्ती अब खत्म समझो। हम एक दूसरे को अब कभी नहीं देख पाएंगे जब तक कि तुम मोहम्मद को नीचा नहीं दिखा देते और उसके चेहरे पे थूक के नहीं आते और उसको थप्पड़ नहीं मार के आते। क्या क्या क्या, मैं सख्त हैरत और गुस्से के आलम में थर थर कांपने लगी। ये क्या कह रहा है उकबा, तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना? मगर उकबा तो लगता था किसी कीमत पे भी अपने दोस्त को नाराज करने को तैयार नहीं। वो बिदक के बोला, ठीक है अगर तू यही कहता है तो ऐसा ही होगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या सुन रही हूं। बदबख्त इंसान, तूने ये कैसे सोच लिया? अरे तू जानता भी है, तू किसकी बात कर रहा है? वो जिनके एक बाल मुबारक की हम इतनी इज्जत करते हैं, जिनकी नालैन मुबारक को हमने अपने सीने से लगाते हैं, उनके तो पैरों की खाक को भी हम अपने सर का ताज बनाते हैं, हमारी जानें जिनके लिए कुर्बान हो, तू कभी ये जुर्रत नहीं कर सकता। मैंने देखा उकबा बड़ी दलेरी के साथ बिजली की सी तेजी से उठा और घर से निकला। नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसके पीछे दौड़ी, मैं कैसे इसको रोकूं? मैं चिल्ला रही थी मगर मेरी आवाज उस तक कहां पहुंच सकती थी। नहीं मैं ये होने नहीं दूंगी। मेरे आंसू गिरते जा रहे थे और मेरे जिस्म में पता नहीं कहां से इतनी कुव्वत आ गई थी। मैं दौड़ रही थी, मैं ये नहीं होने दूंगी। वो तेजी से डग भर रहा था और सामने मैंने देखा मेरे नबी का मुबारक चेहरा। आप उसी रास्ते में आ रहे थे। मेरे प्यारे नबी जब करीब आए तो बड़ी मोहब्बत और शफकत से उकबा से पूछा, क्या बात है उकबा? उकबा कुछ घबरा सा गया, मगर अपने दोस्त की बात को पूरा करने के लिए, ना आओ देखा ना ताओ, जल्दी से मेरे नबी की तरफ थूका और वापस पलट के ये जा और वो जा। उसने तो ये भी नहीं देखा कि उसका फेंका हुआ थूक मेरे नबी तक पहुंचा भी है या नहीं। वाकई मेरे नबी की अजमत और उनका जलाल ऐसा था कि उसने कोशिश की मगर आपकी ताब ना ला सका और वो थूक आप तक पहुंच ही नहीं सका। मेरा दिल आज गम से भरा हुआ था, मेरे नबी की ऐसी तौहीन, ये लोग खुद को क्या समझते हैं? और इस शख्स ने सिर्फ एक अपने दोस्त की बात की खातिर इतनी जुर्रत की? ये सोहबत का असर था जिसने इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। और मेरे नबी को देखो कैसे ये सब सह गए। मैं हैरान थी, इस दुनिया की सबसे अजीम हस्ती, सबसे पाक हस्ती, सबसे कामिल हस्ती, और आपके साथ ऐसा सलूक। ये किताबों में पढ़ना बड़ा आसान था, मगर आज जब मैंने ये देखा है तो मेरा दिल कट गया है। उससे देखा नहीं गया, मैंने तो अपने नबी के नाम को भी हमेशा चूम चूम के रखा, और यहां इनसे ऐसा सलूक। हम तो इनके खिलाफ एक बात भी किसी से सुन नहीं सकते थे, और यहां कोई इनके ऊपर थूक फेंक रहा है। हम तो अपना सब कुछ लुटा दें इनके चेहरे की एक झलक देखने को, और ये ऐसी नाकदरी कर रहे। वाकई ये मेरे नबी का हौसला है, तहम्मुल है, उनका सबर है कि ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। और उनकी उम्मत तो करीब करीब भी इसके नहीं पहुंची, बल्कि उम्मत को तो परवाह ही नहीं, सारी दुनिया काफिर भी हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर मेरे नबी की लगन ही फर्क है। कितना बदनसीब है वो आदमी जिसने हिदायत के पैगाम को ठुकरा दिया। कितने ही सारे लोग मेरे जमाने में भी बुरी सोहबतों की वजह से मेरे नबी के कलमे को ठुकरा देते। वाकई इंसान को अपनी सोहबतें सोच समझ के अपनानी चाहिए। नुकसान तो इसने अपना ही किया, मेरे नबी का तो कुछ भी ना बिगड़ा, उनके तो दर्जे बुलंद ही हुए। मैं देख रही थी मेरे नबी के चेहरे पर वैसा ही सुकून था, सबर था, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं, कोई बुरा भला कहना नहीं, कोई बद्दुआएं देना नहीं, खामोशी, जबकि मेरा खून खौल रहा था और मुझे लगता था कि मैं इस आदमी को खत्म कर दूं। मैंने सोचा मेरे नबी जो इस जमीन पर इतनी शदीद मुखालफत के आगे भी डटे हुए, इनको क्या पता एक वक्त आएगा कि इनकी उम्मती जरा जरा सी बात को, इनके जरा सरा सी बात पे इनके दीन को कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगे। इतने सख्त हालात में भी मेरे नबी का हौसला पहाड़ों जैसा था, और इनके उम्मती 21वीं सदी में खुशहाल हालात में रहते हुए भी दीन से दूर भागेंगे। क्या इनकी उम्मतियों ने कभी इनकी जिंदगी को पढ़ा नहीं, देखा नहीं? इस माशरे का तो हाल ही अजीब था, कोई अपनी बड़ाई के एहसास में हक को ठुकरा रहा था, कोई बुरी सोहबतों की वजह से, कोई हसद की वजह से, जबकि मेरे नबी का पैगाम सीधा था और सादा था, मगर मानने वाले बहुत ही कम थे। बहुत कम लोग ये जुर्रत कर रहे थे कि मेरे नबी की बात पे लब्बाई कहते हैं। मैंने देखा कुछ गरीब से लोग सफा पहाड़ी के करीब एक तंग सी गली में दाखिल होकर कहीं जा रहे हैं। वो लोगों की नजरों से बचते बचते एक तरफ को हो जाते हैं और ऐसे शो करते हैं जैसे मामूल का कोई काम कर रहे हैं। ए, उनके पीछे होली गली में एक दरवाजा था। वो बगैर किसी को शक में डाले हुए इस दरवाजे में चुपके से दाखिल हो जाते थे। मैंने अंदर झांक के देखा तो वहां मेरे नबी बैठे थे अपने साथियों के साथ। आप यहां? ये तो अरकम का घर है। आपने शायद इसको एक दरसगाह बनाया हुआ था। यहां आप सहाबा को आयतें सुना रहे थे, उनको तालीम दे रहे थे। सादा सा घर, छोटा सा घर, जिसके बारे में किसी को शक भी ना पड़े कि मुसलमान यहां जमा होते हैं, मगर कितना बरकतों से भरा हुआ घर। मेरे नबी के साथी आपके इर्द गिर्द शौक से बैठे हैं, बड़े गौर से आपकी बातें सुन रहे हैं और याद कर रहे हैं। कितनी बाबरकत मजलिस है, मगर ना यहाँ पर कोई कीमती फर्नीचर है, ना कोई नरम मजलिस है। सब जमीन पे बैठे, सादा मजलिस, कोई लग्जरी नहीं, मगर कोई शिकायत नहीं, ना गर्मी की ना जमीन की सख्ती की। मुझे डर लगा कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि ये सब यहां है, मगर लगता है ये एक खुफिया हेडक्वार्टर है। किसी को शक इसलिए नहीं हो रहा कि सही करते करते कोई इधर को ऐसे निकल जाए कि पता भी ना चले। मेरे नबी के साथी अपने ऊपर होने वाले मजालिम की दास्तानें सुना रहे थे और मेरे नबी उनको हौसला दिए जा रहे थे। मैंने सोचा ये सब कब तक चलेगा? मैं तो यहां रहती भी नहीं, फिर भी मेरा दम घुटने लगा है। फिर भी मुझे इतनी बेबसी महसूस हो रही है। फिर भी मुझे लग रहा है ये कब ओवर होगा? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहां पे तो कोई सपोर्ट भी नजर नहीं आ रही, कोई हालात का बदलना नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये तो मुखालफत बढ़ती ही जा रही है। हालात तो मजीद तंग हो रहे हैं। कब तक ये ऐसा होगा? कब तक ये लोग तशद्दुद सहेंगे? कब तक इनके ऊपर ये मजालिम होते रहेंगे? या इसका कोई एंड भी होगा? एंड कैसे होगा? वे आउट कैसे होगा? कुछ बेबस मुसलमानों से मेरे नबी फरमाने लगे, तुम ऐसा करो, हबशा की तरफ चले जाओ। सुना है वहां का बादशाह बड़ा खुदतर्स है, खुदा तर्स है और इंसाफ करने वाला है। मैंने देखा मेरे नबी के साथी उनकी हर बात को मान रहे थे। बाहर वाले लोग जितने संगदिल थे, ये लोग इतने ही बड़े जानिसार थे। साथियों के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मेरे नबी उठे और बैतुल्लाह की तरफ चल दिए। आप बगैर किसी झिझक के वहां नमाज पढ़ने लगे। लेकिन आज मुझे माहौल में कुछ खतरे की बू आ रही थी। मैंने देखा एक तरफ अबू जहल और उसके कुछ दोस्त बैठे हुए मेरे नबी को देख रहे हैं। बड़ा रिस्क है आज मेरे नबी के लिए, इसलिए कि उनकी आंखों में एक शैतनत नजर आ रही है। उन्होंने खूनखार नजरों से मेरे नबी की तरफ देखा और एक बोला, मैं चैलेंज करता हूं, कौन है जो ऊंट की ओजड़ी उठा के लाए और जब मोहम्मद सजदे में जाए तो उसके ऊपर रख दे। मैंने देखा वो ही बदबख्त उकबा उठा और करीब में एक जगह ऊंट नहर किया गया था। उसकी खून और गंदगी में लथपथ ओझड़ी उठाकर खड़ा हो गया। वो इंतजार कर रहा था कि कब मेरे नबी सजदे में जाए और वो ये ओझड़ी उनके ऊपर रख दे। और फिर वो ही हुआ जिसका डर था। मेरे नबी सजदे में गए तो ये खामोशी से गया और भारी भरकम ओझड़ी मेरे नबी के सर पे रख दी। उस ओझड़ी से गंदा पानी रिस रिस के गिर रहा था। वजनी ओझड़ी मेरे नबी के कंधों के दरमियान में पड़ी हुई थी। मैं बेसाख्ता चीख उठी, हाय ये क्या, कोई कुछ करे। मैं भाग रही थी, किसको कहूं, मैं बेबस थी। करीब ही मुझे कुछ मुसलमान भी नजर आए मगर वो भी कुछ करने के काबिल नहीं थे। वो खुद इतने कमजोर थे, उनकी कहाँ जुर्रत थी कि वो इन सरदारों के सामने कुछ कर सके। हाँ मैंने एक को देखा, वो दौड़ता हुआ कहीं जा रहा है, शायद कहीं से कोई मदद लाने को गए। ये जालिम कैसे हैं, ये हंस रहे हैं। मेरे नबी बोझ से दबे हुए थे और इस शैतानों के टोले को इस कदर हंसी आ रही थी कि हंस हंस के एक दूसरे पे लोट पोट होते जा रहे थे। मुझे डर था मेरे नबी का दम ना घुट जाए। थोड़ी देर गुजरी थी, एक छोटी बच्ची दौड़ती भी आई। बाबा, हाय मेरे बाबा, ये पुकारते हुए उसने उजड़ी मेरे नबी के सर पर से उतारी और उन्हें जब जमीन से सर उठाया और इन सरदारों को देखा तो मेरे नबी की जुबान से एक बात निकली, ए अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। उनकी जुबान से ये अल्फाज निकलने की देर थी, मैंने देखा कि इन सरदारों को जैसे सांप सूंघ गया। वो ही जो अभी तक हंस हंस के दोहरे हो रहे थे, अब उनकी सांसें जैसे अटक गईं, सख्त खौफजदा हो गए। लगता है इनको पता है कि मेरे नबी की जुबान से निकली हुई कोई बात कभी रद्द नहीं हो सकती। आज यहीं तक, इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ एक नए एपिसोड की देखेंगे कि मक्का की गलियों में और क्या हो रहा है। उम्मीद है कि आप इससे सीख रहे होंगे और उम्मीद है कि बहुत सारे हालात आपके सामने आ रहे होंगे।